नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट से इतर स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, लिंगटेनश्टीन के राजकुमार एलोइस और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ व्यापार तथा निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, संस्कृति और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, संस्कृति, समुद्री अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने एआई को सर्वव्यापी बनाने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका पर चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई इंपैक्ट समिट कई मायनों में सफल रहा। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने ये बात कही।
This AI Impact Summit has been a grand success.
यह AI Impact Summit कई मायनों में एक बड़ी सफलता साबित हुआ है। इसमें 5 लाख से अधिक दर्शक शामिल हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और दुनिया भर से आए अनेक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख AI कंपनियां इसमें शामिल हुई। साथ ही कई स्टार्टअप्स के नवाचारों को प्रदर्शित करने का शानदार अवसर मिला।
Getting the opportunity to showcase their work.
श्री वैष्णव ने बताया कि निवेशकों ने बुनियादी ढांचे में $250 अरब और वेंचर कैपिटल डीप टेक में $20 अरब के निवेश की घोषणा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सभी प्रमुख देशों ने समिट घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि 70 से अधिक देशों ने पहले ही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यहां संख्या 80 से अधिक होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें पंजीकृत प्रतिनिधियों के लिए संशोधित प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा दी गई है। परामर्श के अनुसार कैब से आने वाले प्रतिनिधियों को गेट नंबर 4 से और मेट्रो से आने वाले प्रतिनिधियों को गेट नंबर 10 से सुबह 9:15 से प्रवेश की अनुमति होगी। प्रदर्शकों के लिए गेट सुबह 8 बजे खुलेंगे। मीडिया सेंटर कल चालू नहीं रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के कंछार जिले के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र के नतनपुर में जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश के 17 राज्यों के 334 प्रखंडों और 1954 गांवों के साथ असम के 140 सीमावर्ती गांवों में आयोजित किए जा रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा से लगे 334 प्रखंडों और लगभग 2000 गांवों को भी विकास कार्य शुरू हो चुका है। गृहमंत्री ने असम में अवैध अतिक्रमण को सबसे बड़ी समस्या बताया। इसके बाद गृहमंत्री ने अगरतला में पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों की तैनाती का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने राज्य में SIR प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई नए निर्देश दिए हैं। पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराने और पूर्व न्यायाधीशों की तलाश करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा संशोधन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त ए श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध न कराने पर गंभीर संज्ञान लिया। न्यायालय ने आयोग को 28 फरवरी तक राज्य में मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी है। भारत और फिनलैंड ने आज संयुक्त समन्वय समूह के अंतर्गत रक्षा उत्पादन संबंधों को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में फिनलैंड के विदेश मंत्रालय के विशेष दूत एंटी वसारा से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में अंतरिक्ष, क्वांटम कंप्यूटिंग और विशिष्ट प्रौद्योगिकी में भारत फिनलैंड रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पल्ले केले में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। ओमान के 105 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 10वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कल सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे। वहीं भारत रविवार को अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।